एक सवाल जो फ़लस्तीन के हवाले से लोगों के अजहान में उठता है वो ये कि इसराइल के जो इस वक्त दुश्मन है उम्मत मुस्लिमा का, इसने फ़लस्तीन ही को क्यों इंतखाब किया?
जी, एक कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। इसके मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ वजूहात जो है वो बयान कर सकते हैं। हमारे ख्याल में इसकी तीन चार वजूहात जो है वो मेजर हैं कि अगर किसी के जहन में ये हो तो शायद ये सवाल हल हो जाए उनके लिए। सबसे पहले तो ये कि हमें एक फिनोमेना इस वक्त दुनिया के अंदर दरकार है और इस वक्त हम दरपेश हैं उस फिनोमेना से। उसका नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, NWO। अगर आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तफासील पढ़ें तो इसके अंदर इसका गहरा एक जो है वो आप समझें कि इसका संबंध है किस चीज़ के साथ, ज़ायनिज़्म के साथ, सहयूनियत जिसको हम ताबीर करते हैं, इसके साथ इसका गहरा ताल्लुक है। ठीक है, इसकी बुनियाद पे ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील दिया जा रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो एक दुनिया, जिस तरह अभी हमारे पास पूरी दुनिया मौजूद है, उसकी एक हुकूमत, उसके अंदर एक अथॉरिटी, उसके अंदर हर हवाले से, बेशक वो फाइनेंशियल निज़ाम हो, बेशक वो कल्चरल निज़ाम हो, वो सब एक हो। ठीक है, इस तरह का एक निज़ाम दुनिया के अंदर कायम करना, और इसके टॉप पे कौन हो? इसके टॉप पे यही ज़ायनिस्ट हो, यही इम्पीरियलिस्ट हो।
सही,
ये इनका एक ख्वाब है कि जो इन्होंने दुनिया के लिए देखा हुआ है।
देखा बिल्कुल।
अगर आप ज़ायनिज्म की हिस्ट्री भी, के यकीनन आपके कुछ दूसरे शोज़ में आएगी इंशाल्लाह इस पर तफसील, अगर आप उसको देखें तो ये कहते हैं कि नील से फुरात तक हमें ये सारे का सारा इलाका जो है, नाइल्स टू यूफ्रेटीज़, ये हमें अपने कब्ज़े में करना है,
सही,
इसके ऊपर हमारी हुकूमत कायम होगी। अब आप अगर नील से फुरात के अंदर देखें तो आपके बहुत सारे
जहाँ बहुत सारे इस्लामी
जो
ममालिक हैं,
ममालिक हैं इस्लामी, वो कवर होते हैं। तो एक तो ये कंट्रोल और डोमिनेंस जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सूरत में है, दूसरा जो है वो खुद ये जो आइडियोलॉजी या ज़ायनिज़्म की हमने आपसे अर्ज़ किया, फिर तीसरा स्ट्रेटिजिक इसकी इम्पोर्टेंस, इस खित्ते की, इस इलाके की, इस मंतिके की स्ट्रेटिजिक इम्पोर्टेंस। उसके अंदर हम देखते हैं कि एशिया ले लें या मिडल ईस्ट ले लें या यूरोप ले लें, इन तीनों के हवाले से अगर फिलिस्तीन को देखा जाए तो इसकी एक बहुत ही एक अच्छी स्ट्रेटजी के हवाले से बहुत अच्छी लोकेशन बनती है। इसके ऊपर कब्ज़ा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये कब्ज़ा अपना रखने के लिए या कायम करने के लिए इन्होंने इस खित्ते का सिलेक्शन किया।
तो खुद इस्लाम का अफ्रीका के साथ जो रबता है,
अफ्रीका के साथ बिल्कुल ऐसे
इसी रास्ते
इसी रास्ते से। अब आप देखें कि दूसरा ये कि रिसोर्सेज के हवाले से ये पूरा खित्ता जो है वो रिच है, यानी इसके अंदर रिसोर्सेज बहुत है, मादनी ज़खायर बहुत सारे हैं, इसके अंदर तेल आपको मिलता है, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं कि जो इस वक्त अकवाम को जिनकी ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, दूसरों के ऊपर अपने इकतदार को बरकरार रखने के लिए, कायम करने के लिए। तो इकोनॉमिक रीजन इसके साथ आ गई, जाहिर है कि जहाँ पर रिसोर्सेज होंगे वहाँ पर आपकी इक्तसादी रीजन आ जाएंगी। इसी तरह से हम देखें कि मुसलमानों की जो सरजमीन है जहाँ पर सारे मुसलमान मुल्क हैं उसके कल्ब में वाकया हो रही है, इसके ऊपर कब्जे का मतलब है कि बाकी मुसलमान हुकूमतों के ऊपर अगर कब्जा ना भी हो तो इस लेवल का आपका कंट्रोल होगा कि वो आपकी बात सुनेंगे। ठीक है, तो इस जो इस ज़मीन का एक खुद जो है वो एक सबका राय, जैसा आगा साहब ने भी बयान किया कि पीछे जो जंगें भी हुई, जिससे भी थोड़ी सी हिस्ट्री देखी है इस खित्ते की, तो इस खित्ते की डोमिनेंस का मतलब है कि तकरीबन दुनिया पर डोमिनेंस। ठीक है, और फिर जो है वो हम आखिरी जो एक बात इसमें करना चाहेंगे वो है, जिसका ज़्यादा मैं कायल, इन सारी वजूहात के होते हुए सबसे ज़्यादा हकीर जिस चीज़ का कायल है वो ये है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर, हज़रत इमाम का ज़ुहूर, उसका गहरा ताल्लुक है इस सरज़मीन से। और इसको हम आगे जाके इंशाल्लाह मज़ीद भी एक्सप्लेन करेंगे कि आप अगर देखें खुद इमाम के ज़ुहूर को, कि मदीना के अंदर आपके पास मख्फी ज़ुहूर होगा इमाम का, एक लिमिटेड लेवल पर होगा, और ये रिवायात में सारी चीज़ें मौजूद हैं। फिर मक्का के अंदर आपका अलनी और ओपन, जहाँ पर आप अनाउंस करेंगे अपने ज़ुहूर को, मौला कहेंगे कि मैं हूँ वो कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ, वो फर्जंद रसूल हूँ, मैं हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का बेटा हूँ, मैं वो मसीहा हूँ, मैं वो, ये सारे जब इंट्रोडक्शन कराएंगे तो जो पहला दुश्मन आपका करार पाएगा वो कहाँ पर करार पाएगा? खुद मक्का के अंदर। फिर आप देखें कि इमाम कहाँ जाते हैं, इमाम जाते हैं कूफा, इमाम का हेड क्वार्टर मुसलमा तमाम जितनी भी रिवायात है उसके मुताबिक कूफा बनता है। तो कूफा कहाँ पर करार पाता है? इराक के अंदर। ये दूसरी जगह जेहन में रखते हैं, पहले आपके पास आया मक्का, फिर आपके पास आया कूफा। यहाँ से इमाम कहाँ जाएंगे? जहाँ पर वो आलमी जंग होनी है, जिसको आर्मागेडन के नाम से भी ताबीर किया गया, बैतुल मुकद्दस। अब ये तीन जगहों को आप जहन में रखिए और आप देखिए कि दुश्मन ने, हमारे दुश्मन ने किस तरह से प्लानिंग किया कि मक्का के अंदर लाके वहाबी सऊदी तकफीरियों को बिठाया, वो उनकी एक इनडायरेक्ट डोमिनेंस
बिल्कुल
है,
ऐसे, बिल्कुल ऐसे।
अमेरिका की और इसराइल की इनडायरेक्ट डोमिनेंस है वहाँ पर उस खत्ते के ऊपर। फिर आप अगर इराक में देखते हैं तो हजारों और लाखों की तादाद में वहाँ पर अपने फौजी पहुँचाए, ठीक है, वो वॉर ऑन टेरर के नाम पे, और हम वेपन्स ऑफ मैस डिसेप्शन, जिसको ही वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन कहते हैं, हम वेपन्स ऑफ मैस डिसेप्शन कहते हैं। क्यों? डिसेप्शन का मतलब है कि आपने धोखा दिया, एंड पे वहां से वेपन्स तो कोई नहीं
निकले,
ठीक है कि हम सद्दाम के भी शहदाई नहीं है, लेकिन ये इन्होंने इसको हीले और बहाने के तौर पे यूज किया, वहां कब्जा। और तीसरी जहां जगह ये गैर मुस्तकीम कब्जा नहीं कर सकते थे, फिलिस्तीन की सरजमीन, वहां पर उन्होंने जाके मुस्तकीम इस सहयूनी रियासत का वजूद और उसका क्याम रखा, इसकी बुनियादें रखी।
बहुत शुक्रिया आगा साहब।